एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम ज्ञान के एक ऐसे विशाल भंडार पर बात करने वाले हैं जो 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन जिसकी बातें आज भी उतनी ही जरूरी, उतनी ही कनेक्टेड महसूस होती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं त्रिपिटक की। ये बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ समूह है। और देखिए, जब हम ग्रंथ समूह कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये कोई एक किताब नहीं है।
हाँ, ये तो मतलब ज्ञान का एक बहुत बड़ा संग्रह है। शिक्षाएं हैं, नियम हैं, विश्लेषण है, काफी कुछ है इसमें।
और इसकी प्रासंगिकता, जरा सोचिए, आज की दुनिया में कितना तनाव है, कितनी अनिश्चितता है, एक तरह की अंदरूनी खोज भी चलती रहती है सबकी। तो ऐसे में त्रिपिटक हमें जीवन के जो बिल्कुल बुनियादी सवाल हैं कि भाई दुख क्या है, क्यों है, कैसे निकलने का कोई रास्ता है,
बिल्कुल
इन पर सोचने का एक व्यवस्थित तरीका देता है।
एकदम सही।
और ये सिर्फ कोई धार्मिक या ऐतिहासिक बात नहीं है, ये तो मानव मन को समझने, एक नैतिक जीवन जीने और शायद थोड़ी ज्यादा शांति पाने का एक पूरा रोडमैप जैसा है।
हाँ, एक नक्शा है।
तो चलिए आज इस गहरे सागर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये तीन टोकरियां हमें क्या सिखा सकती हैं।
तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई ये टोकरियां भरी किसने, मतलब कौन है इसका लेखक, कोई एक व्यक्ति?
ये दिलचस्प सवाल है, क्योंकि त्रिपिटक का कोई एक लेखक है ही नहीं। ये किसी एक इंसान की सोच का नतीजा नहीं है।
अच्छा।
हाँ, ये तो सदियों तक एक पूरे समुदाय की, मतलब उनकी सामूहिक बुद्धि और मेहनत का फल है।
ओके, लेकिन शुरुआत तो कहीं से हुई होगी। जैसे ऐतिहासिक बुद्ध सिद्धार्थ गौतम, वो तो थे लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में।
हाँ, शुरुआत उनसे ही होती है, पर मजे की बात यह है कि उन्होंने खुद कुछ लिखा नहीं।
अच्छा, ये बात है।
जी, बुद्ध ने करीब 45 साल तक घूम घूम कर उपदेश दिए। उनके जो शिष्य थे, जिन्हें संघ कहा जाता था, उन्होंने इन सारी शिक्षाओं को याद रखा।
याद रखा मतलब लिखा नहीं?
नहीं, उस समय लिखने का रिवाज उतना नहीं था। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ये ज्ञान आगे बढ़ा, और ये याददाश्त पर आधारित एक बहुत ही, मतलब, सख्त परंपरा थी। बहुत अनुशासन था इसमें।
कमाल है। तो फिर ये किताबों की शक्ल में कैसे आया?
वो आया बुद्ध के महापरिनिर्वाण, यानी उनके निधन के फौरन बाद। एक पहली बौद्ध संगीति, मतलब एक तरह की काउंसिल हुई।
अच्छा, पहली बौद्ध संगीति। वहां क्या हुआ था? क्या सब कुछ लिख लिया गया?
लिखा तो बहुत बाद में गया। पहली संगीति में मुख्य रूप से संकलन हुआ, सत्यापन हुआ। कहते हैं कि वहां बुद्ध के सैकड़ों प्रबुद्ध शिष्य जमा हुए थे। उनमें आनंद थे, जो बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य माने जाते हैं। उनकी याददाश्त तो कमाल की थी।
हाँ, सुना है उनके बारे में।
तो उन्होंने बुद्ध के प्रवचनों, यानी सुत्तों का पाठ किया। जो भी बुद्ध ने कहा था, वो सब उन्होंने सुनाया।
अच्छा, तो सुत्तपिटक का आधार आनंद की याददाश्त हुई।
विनय पिटक,
जो नियमों वाला हिस्सा है,
उसके लिए मुख्य थे उपाली। वो भिक्षुओं के अनुशासन के नियमों के विशेषज्ञ माने जाते थे। तो उन्होंने इन नियमों, यानी विनय, का पाठ किया। तो सुत्तपिटक और विनय पिटक की नींव, आप कह सकते हैं, वहीं पड़ गई।
और तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक।
हाँ, अभिधम्म पिटक, जो ज्यादा दार्शनिक है, ज्यादा विश्लेषणात्मक है, वो बाद की पीढ़ियों के जो विद्वान भिक्षु थे, उन्होंने विकसित किया। तो ये थोड़ा बाद का है।
तो मतलब इसकी जो अथॉरिटी है, वो बुद्ध के ज्ञान और फिर संघ की इस पूरी सावधानी भरी संरक्षण प्रक्रिया से आती है। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरी जीवंत परंपरा की आवाज है।
बिल्कुल, और आज भी दुनिया भर में विद्वान इसे पढ़ते हैं। और आजकल तो इसे समझने के लिए मॉडर्न साइकोलॉजी और फिलॉसफी जैसे विषयों की मदद भी ली जा रही है।
हाँ, ताकि आज के लोग इसे बेहतर समझ सकें।
बिल्कुल, ये ज्ञान सिर्फ प्राचीन नहीं, बल्कि जीवित है। तो अब समझते हैं कि इन तीन पिटकों, यानी टोकरियों का असल मकसद क्या है, ये हमें कहां ले जाना चाहती हैं।
देखिए, त्रिपिटक का जो केंद्रीय लक्ष्य है, वो है दुख से मुक्ति। और यहाँ दुख का मतलब सिर्फ फिजिकल पेन या उदासी नहीं है।
अच्छा।
हाँ, बल्कि जीवन में मौजूद हर तरह का असंतोष, तनाव, बेचैनी, जिसे पाली में दुख कहा गया है। त्रिपिटक का वादा है कि इस दुख से पूरी तरह मुक्त होकर स्थायी शांति और ज्ञान, यानी निर्वाण, पाया जा सकता है।
और इसका सबसे, मुझे लगता है, क्रांतिकारी विचार ये है कि इस दुख का कारण बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है।
एकदम सही। हमारी अपनी इच्छाएं, जिन्हें तृष्णा कहते हैं, हमारी नफरतें, यानी द्वेष, और चीजों को असलियत में ना देख पाने की हमारी अज्ञानता, यही जड़ है।
तो अगर समस्या अंदर है तो समाधान भी अंदर ही खोजना होगा, बाहर दुनिया बदलने से बात नहीं बनेगी।
बिल्कुल, त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं यानी धम्म को एक प्रैक्टिकल रास्ते की तरह पेश करता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है बल्कि एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मन को साधने का, मन को समझने का।
अच्छा, तो ये जो तीन पिटक हैं ये इस यात्रा में अलग अलग रोल निभाते होंगे।
हाँ बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए विनय पिटक जो है वो नींव डालता है नैतिक आचरण और अनुशासन की, एक तरह से माहौल बनाता है
ओके,
ताकि समुदाय में शांति रहे, सद्भाव रहे और लोग ध्यान और समझ का अभ्यास ठीक से कर सकें।
ठीक है, नींव।
फिर सुत्त पिटक आता है, ये यात्रा का दिल है कह सकते हैं। इसमें बुद्ध की सीधी शिक्षाएं हैं कि भाई वास्तविकता क्या है, मन कैसे काम करता है, मुक्ति का रास्ता क्या है, ध्यान की विधियां क्या हैं, ये सब।
यानी मेन टीचिंग सुत्त पिटक में है।
हाँ ज्यादातर। और फिर तीसरा है अभिधम्म पिटक, ये एक तरह का बहुत गहरा सूक्ष्म विश्लेषण है, ये मन और वास्तविकता की परतें खोलकर दिखाता है, बिल्कुल बारीक स्तर पर कि सब कुछ कैसे काम करता है।
बापरे, बाबर ये तो काफी गहरा गोता हो गया, यानी नैतिकता से शुरू करके फिर ध्यान के अभ्यास से गुजरते हुए एक बहुत गहरी समझ तक पहुंचना, ऐसा लगता है इसमें जीवन का हर पहलू कवर हो गया होगा।
निश्चित रूप से, नैतिकता, ध्यान, मनोविज्ञान, दर्शन, कहानियां, कविताएं, संग चलाने के नियम, सब कुछ है इसमें। चलिए अब हर पिटक को थोड़ा और करीब से देखते हैं, शुरुआत करते हैं विनय पिटक से।
हाँ, विनय पिटक यानी अनुशासन की टोकरी। इसका मुख्य काम तो बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के समुदाय संघ के लिए नियम कानून तय करना था, पर ये नियम किसी मतलब ईश्वर के आदेश जैसे नहीं थे, है ना?
नहीं बिल्कुल नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। ये नियम बुद्ध ने धीरे धीरे बनाए थे, जब भी कोई खास घटना होती थी या कोई समस्या आती थी उसके जवाब में। इनका मकसद था कि संघ में शांति और सामंजस्य बना रहे
ताकि लोग अपने मुख्य काम यानी ध्यान और अभ्यास पर फोकस कर सकें।
बिल्कुल, इसमें भिक्षुणों और भिक्षुणियों के लिए सैकड़ों नियम हैं जिन्हें पातिमोख कहते हैं। इसमें छोटे मोटे शिष्टाचार से लेकर गंभीर अपराधों तक सब कुछ शामिल है।
तो ये सिर्फ एक नियमों की लिस्ट नहीं है, इसमें और भी कुछ है?
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि एक आध्यात्मिक समुदाय को चलाने के लिए आपसी सम्मान, सजगता, अनुशासन कितना जरूरी है। इसमें संघ की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे दीक्षा कैसे होगी, उपोषित समारोह कैसे होंगे, ये सब भी हैं। यहाँ तक कि बुद्ध के जीवन की कुछ कहानियां भी इसमें मिलती हैं।
अच्छा,
तो ये असल में सच्चे जीवन और सामाजिक सद्भाव के सिद्धांतों को दर्शाता है।
दिलचस्प है कि अनुशासन पर इतना जोर दिया गया। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे ज्यादा मशहूर टोकरी पर।
जी, सुत्त पिटक। हाँ, सुत्त पिटक यानी प्रवचनों की टोकरी। ये त्रिपिटक का सबसे बड़ा हिस्सा है और सही मायने में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं यानी धम्म का मुख्य स्रोत यही है। इसमें बुद्ध और उनके कुछ प्रमुख शिष्यों के हजारों उपदेश हैं, संवाद हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं।
हजारों? ये तो बहुत ज्यादा है। इसे कैसे व्यवस्थित किया गया?
इसे पांच बड़े संग्रहों में बांटा गया है जिन्हें निकाय कहते हैं।
पांच निकाय? अच्छा, क्या इनमें अलग अलग तरह की चीजें?
हाँ बिल्कुल, जैसे एक निकाय है दीघ निकाय, इसमें लंबे लंबे प्रवचन हैं जो बौद्ध सिद्धांत और ब्रह्मांड विज्ञान पर एक बड़ा नजरिया देते हैं। फिर है मध्यम निकाय, इसमें मध्यम लंबाई के सूत्र हैं और ये सबसे विविध है, इसमें लगभग हर विषय पर चर्चा है।
संवाद के रूप में भी?
हाँ, अक्सर संवाद के रूप में। फिर संयुक्त निकाय है जिसमें हजारों छोटे छोटे सूत्र हैं जिन्हें विषय के हिसाब से ग्रुप किया गया है, जैसे कर्म पर सारे सूत्र एक जगह, चार आर्य सत्यों पर एक जगह। ये किसी खास टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है,
याद रखने में भी आसानी होती होगी।
बिल्कुल। और एक अंगुत्तर निकाय है जिसमें शिक्षाओं को संख्या के हिसाब से जमाया गया है, जैसे तीन रत्न कौन से हैं, चार आर्य सत्य क्या हैं, पांच बाधाएं क्या हैं, आठ अंग वाला मार्ग क्या है, इस तरह से। ये मौखिक परंपरा में याद रखने के लिए बहुत मददगार था।
और पांचवा आपने कहा पांच निकाय हैं?
हाँ, पांचवा है खुद्दक निकाय। ये एक तरह का मिला जुला संग्रह है, इसमें कविताएं, कहानियां, छोटी छोटी किताबें शामिल हैं और इसी में कुछ सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ आते हैं।
जैसे?
जैसे धम्मपद, ये प्रेरणादायक छंदों का संग्रह है जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला बौद्ध ग्रंथ है। इसी में जातक कथाएं हैं, जो बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं।
हाँ, जातक कथाएं तो बहुत सुनी हैं।
और थेर गाथा और थेरी गाथा भी हैं। ये अनुभवी भिक्षुओं और भिक्षुणियों की अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों पर लिखी कविताएं हैं। बहुत सुंदर हैं ये। तो सुत्तपिटक सच में धम्म का एक खजाना है।
ऐसा लगता है सुत्तपिटक में वाकई हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे कोई दर्शन में रुचि रखता हो या कहानियों में या फिर ध्यान के प्रैक्टिकल तरीकों में। अब चलते हैं तीसरी ठोकरी की तरफ, अभिधम्म पिटक। यह सुनने में सबसे मुश्किल लगता है।
हाँ, अभिधम्म पिटक यानी विशेष या उच्च सिद्धांत की टोकरी। ये त्रिपिटक का सबसे दार्शनिक और विश्लेषणात्मक हिस्सा है। ये सुत्तों की तरह सीधी बातचीत या कहानी नहीं है।
तो ये क्या है फिर?
ये मन और पदार्थ यानी हमारा जो पूरा अनुभव है दुनिया का, उसको उसके सबसे बुनियादी मतलब अविभाज्य घटकों में तोड़कर समझने की कोशिश है।
सबसे बुनियादी घटक,
जैसे एटम या पार्टिकल।
हाँ कुछ वैसा ही, पर मानसिक स्तर पर। अभिधम्म कहता है कि जिसे हम मैं या ये कुर्सी या ये दुनिया कहते हैं, वो असल में कोई ठोस चीज नहीं है। वो असल में पल पल बदलने वाली बहुत छोटी छोटी मानसिक और भौतिक घटनाओं का एक तेज प्रवाह है। इन क्षणिक घटनाओं को धम्म कहा जाता है।
धम्म, हाँ धम्म। अभिधम्म इन धम्मों की पहचान करता है, उनका वर्गीकरण करता है और ये बताता है कि वो एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं, कैसे कारण कार्य का संबंध बनाते हैं और कैसे मिलकर हमारे अनुभव को रचते हैं।
बाप रे, तो ये एक तरह से मन और वास्तविकता का बहुत ही बारीक माइक्रोस्कोपिक नक्शा बनाने का सा हुआ।
बिल्कुल, आपने सही समझा। ये चेतना कैसे काम करती है, विचार और भावनाएं कैसे उड़ती हैं और कैसे खत्म होती हैं, इसका एक बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही सूक्ष्म नक्शा देता है। ये समझने में मदद करता है कि हमारा अनुभव कैसे पल पल रचा जा रहा है।
ये तो सुनने में काफी जटिल लग रहा है।
हाँ, ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर जो लोग वास्तविकता की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि पाना चाहते हैं, उनके लिए इसे एक बहुत शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। कुछ लोग तो इसकी तुलना आज के न्यूरोसाइंस या कॉग्निटिव साइकोलॉजी से भी करते हैं,
अच्छा,
क्योंकि वो भी मन के काम करने के तरीके को समझने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल। तो ये तीनों पिटक मिलकर एक पूरी यात्रा बनाते हैं, नैतिक आचरण से शुरुआत, फिर बुद्ध की सीधी शिक्षाओं को सुनना समझना, और फिर मन और वास्तविकता की इतनी गहरी चीरफाड़ तक। अब अगर हम इन सब में से कुछ सबसे जरूरी संदेश या विषय निकालना चाहें तो वो क्या होंगे?
ये अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से सबसे पहला और बुनियादी संदेश तो है चार आर्य सत्य। ये बौद्ध धर्म की नींव है, कह सकते हैं।
चार आर्य सत्य?
हाँ, इसे आप एक डॉक्टर के डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन की तरह देख सकते हैं। एक, पहला सत्य, जीवन में दुख या असंतोष, दुख है, ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना होगा। दो, दूसरा सत्य, इस दुख का कारण है और वो कारण है हमारी तृष्णा, चाहत, मोह, द्वेष, नफरत, विरोध और अज्ञान, चीजों को ठीक से न समझना।
कारण अंदर ही है।
बिल्कुल। तीन, तीसरा सत्य, अच्छी खबर ये है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है, इससे पूरी तरह मुक्त होना संभव है, जिसे निर्वाण कहते हैं। चार और चौथा सत्य, इसे खत्म करने का एक व्यवहारिक रास्ता भी है और वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग।
ये तो बहुत ही सीधा और तार्किक लगता है, समस्या, कारण, समाधान और रास्ता। अच्छा, दूसरा अहम विचार क्या है?
वो है अस्तित्व के तीन लक्षण, मतलब हर बनी हुई चीज की तीन खासियतें होती हैं। अनिच्च,
हाँ।
सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ एक प्रवाह है। दुख, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है, स्थायी नहीं है, इसलिए उन चीजों से चिपके रहना जो टिकेंगी नहीं, दुख का कारण बनता है। और तीसरा अनत्ता,
अनात्मा,
मतलब आत्मा नहीं है।
हाँ, इसका मतलब है कि किसी भी चीज में हमारे अंदर भी कोई स्थायी, अलग, स्वतंत्र मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं, वो बस बदलते हुए शारीरिक और मानसिक हिस्सों, स्कंधों का एक जोड़ है जो लगातार बदल रहा है।
ये अनात्म वाला विचार तो बहुत गहरा है, ये हमारे सेल्फ के पूरे कॉन्सेप्ट को ही चुनौती देता है। अगर कोई स्थायी मैं नहीं है तो फिर क्या है? यही तो, ये हमें चीजों को ज्यादा इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे पर निर्भर देखने में मदद करता है। हम अलग थलग द्वीप नहीं हैं, बल्कि एक बड़े वेब का हिस्सा हैं।
हाँ, ये समझ शायद आज की दुनिया में बहुत जरूरी है, जहां मैं, मेरा इंडिविजुअलिज्म पर इतना जोर है।
बिल्कुल।
और आपने दुख खत्म करने के रास्ते का जिक्र किया, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये क्या है संक्षेप में?
ये आठ अंगों वाला या आठ हिस्सों वाला रास्ता है जिन्हें एक साथ साधना होता है। इन्हें मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। प्रज्ञा, जिसमें सही समझ और सही इरादा आता है। शील, जिसमें सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका शामिल है। और समाधि, जिसमें सही प्रयास, सही सजगता यानी माइंडफुलनेस और सही एकाग्रता आती है।
अच्छा, तो ये तीनों साथ चलते हैं?
हाँ, ये एक संतुलित मार्ग है जिसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। ये न तो भोग विलास में डूबने को कहता है, न ही शरीर को कष्ट देने वाली कठिन तपस्या को।
और कर्म का सिद्धांत, त्रिपिटक में कर्म के बारे में क्या कहा गया है? क्या ये भाग्य या डेस्टिनी जैसा है?
नहीं, त्रिपिटक में कर्म भाग्य नहीं है। ये कारण और परिणाम का एक नैतिक नियम है जो हमारे इरादे, चेतना पर आधारित है।
इरादे पर?
हाँ, इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे इरादे से किया गया काम अच्छा फल लाता है, बुरे इरादे से किया गया काम बुरा। यह हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने को कहता है। हमारे सुख दुख काफी हद तक हमारे अपने कर्मों का फल है।
और आजकल माइंडफुलनेस और करुणा की बहुत बात होती है, ये भी यहीं से आते हैं?
बिल्कुल। माइंडफुलनेस सती का मतलब है अपने वर्तमान क्षण के अनुभव के प्रति जागरूक रहना। अपनी सांस, अपने शरीर की संवेदनाएं, अपने विचार, अपनी भावनाएं, बिना उन्हें जज किए बस देखना। ये मन को शांत करने, स्पष्ट करने का एक मुख्य तरीका है।
और करुणा
या मैत्ता, यानी सभी प्राणियों के प्रति मैत्री, प्रेम और सहानुभूति का भाव विकसित करना। त्रिपिटक इस पर बहुत जोर देता है। वो कहता है कि सच्ची समझ, प्रज्ञा और सच्ची करुणा, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
ये सब बहुत ही गहन और काम के विचार लगते हैं। क्या त्रिपिटक में कुछ ऐसी पंक्तियां या कोट्स हैं जो इन विचारों को खास तौर पर यादगार तरीके से पेश करती हों?
हाँ, बहुत सी हैं, खासकर धम्मपद जैसे ग्रंथों में। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेष्ठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासिति वा करोति वा ततो नम दुखमन्वेति चक्कम बहुतो पदम।
इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि मन सभी अवस्थाओं में सबसे आगे रहता है। मन ही प्रधान है, सभी अवस्थाएं मन से ही बनी हैं। यदि कोई दूषित मन से बोलता है या काम करता है तो दुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के पैरों के पीछे चलता है। ये दिखाता है कि हमारे विचार, हमारा मन कितना शक्तिशाली है और हमारे कर्मों और उनके फलों को कैसे निर्धारित करता है।
मन की प्रधानता। और अनित्यता के बारे में कोई खास पंक्ति?
समग्गो विशुद्धिया, मतलब सभी संस्कार यानी बनी हुई चीजें, कंडीशन्ड चीजें अनित्य हैं। जब कोई इसे प्रज्ञा से यानी अपनी गहरी समझ से देखता है तब वह दुख से विरक्त हो जाता है, ऊब जाता है। यही शुद्धि का मार्ग है।
दुख से विरक्ति अनित्यता को समझने से?
हाँ, या बुद्ध के अंतिम शब्द भी यही थे, वयधम्मा संखारा अपमादेन संपादेथा। मतलब सभी संस्कार अनित्य हैं, बदलने वाले हैं, इसलिए बिना आलस किए पूरी लगन से अपना प्रयास करते रहो।
और नफरत या दुश्मनी के बारे में आज की दुनिया में ये बहुत प्रासंगिक है।
उसके लिए ये कालजयी पंक्ति है, न ही वेरेन वेराणी सम्मन्तीध कुदाचनम अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनंतनो। मतलब इस दुनिया में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से यानी बिना वैर के प्रेम से मैत्री से ही वैर शांत होता है, यही सनातन नियम है।
ये तो सच में एक सनातन नियम लगता है, कितना जरूरी संदेश है ये। और एक और पंक्ति जो मुझे याद आ रही है वो आत्मनिर्भरता पर जोर देती है।
हाँ, आप शायद अत्यदीपा विहरथा अपसरणा अनन्य सरणा, धम्म दीपा विहरथा धम्म सरणा अनन्य सरणा।
हाँ, यही
इसका अर्थ है। स्वयं अपने दीपक बनो, स्वयं अपनी शरण लो, किसी और की शरण मत लो। धर्म को अपना दीपक बनाओ, धर्म को अपनी शरण बनाओ, किसी और को नहीं। ये अपनी समझ और अपने प्रयास पर भरोसा करने का संदेश है।
बहुत शक्तिशाली संदेश है ये भी। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर क्या इन्हें वाकई रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जा सकता है? मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है?
बिल्कुल उतारा जा सकता है। सबसे सीधा और आजकल सबसे पॉपुलर उदाहरण तो माइंडफुलनेस का ही है।
हाँ, वो तो है।
आज लाखों लोग स्ट्रेस कम करने, अपना फोकस बढ़ाने और ज्यादा शांत रहने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन या सजगता का अभ्यास करते हैं। इसकी जड़ें सीधी त्रिपिटक के सतिपट्ठान सूत्त जैसे ग्रंथों में है। अपनी सांस पर ध्यान देना, शरीर की संवेदनाओं को महसूस करना, विचारों और भावनाओं को बिना उलझे आते जाते देखना, ये सब तकनीकें वहीं से आई हैं।
तो तनाव कम करने और मानसिक शांति के लिए ये बहुत उपयोगी है, और नैतिक जीवन जीने के लिए?
उसके लिए पंचशील हैं, पांच सरल सिद्धांत। हिंसा न करना, चोरी न करना, यौन दुराचार से बचना, झूठ न बोलना और नशे वाली चीजों से दूर रहना, ये आज भी एक बहुत मजबूत नैतिक ढांचा देते हैं,
पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी।
हाँ, दोनों में। ये सिद्धांत भरोसे, ईमानदारी और सामाजिक सद्भाव की नींव रखते हैं। सम्यक आजीविका यानी सही तरीके से रोजगार कमाना भी इसी का हिस्सा है।
और जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तब ये शिक्षाएं कैसे मदद कर सकती हैं? जैसे कोई नुकसान हो जाए या कोई फेलियर मिले,
तब अनित्यता यानी अनिच्य का सिद्धांत बहुत काम आता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, न सुख न दुख, सब कुछ बदलता है। ये समझ हमें नुकसान, असफलता या बड़े बदलावों का सामना करने की हिम्मत देती है, एक तरह का लचीलापन देती है। हम चीजों को थोड़ा कम पकड़ते हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं, एक संतुलित नजरिया अपना पाते हैं।
स्वीकार करना, ये मुश्किल होता है अक्सर। और रिश्तों में सुधार के लिए?
उसके लिए करुणा, मैकता का अभ्यास बहुत शक्तिशाली है। अपने लिए और दूसरों के लिए शुभकामनाएं भेजना, मैत्री का भाव विकसित करना, ये गुस्सा, नाराजगी, ईर्ष्या जैसी मुश्किल भावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है। इससे सहानुभूति बढ़ती है, धैर्य आता है, माफ करने की क्षमता विकसित होती है। ये सब किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है।
और जो हमारी बुरी आदतें होती हैं या नेगेटिव पैटर्न होते हैं, क्या उनको समझने और तोड़ने में भी मदद मिलती है?
हाँ, बिल्कुल। प्रतीत्य समुत्पात का जो सिद्धांत है, यानी चीजों के एक दूसरे पर निर्भर होकर उत्पन्न होने का सिद्धांत, वो हमें समझने में मदद करता है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं, उनके ट्रिगर क्या हैं और वो कैसे चलती रहती हैं। ये समझ हमें रिएक्ट करने के बजाय सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करने का मौका देती है। हम अपनी नकारात्मक आदतों के चक्र को तोड़ना सीख सकते हैं।
इसका मतलब है कि ये शिक्षाएं सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी लागू हो सकती हैं।
निश्चित रूप से। अन्योन्याश्रिता, इंटरडिपेंडेंस का विचार, अहिंसा का सिद्धांत, ये सब सामाजिक न्याय, शांति स्थापना और यहाँ तक कि पर्यावरण की देखभाल के लिए भी एक मजबूत आधार देते हैं। सचेत उपभोग भी इसी से जुड़ा है।
तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? आपके लिए सबसे अहम बात क्या रही इस चर्चा में?
मेरे लिए जो सबसे अहम बात उभर कर आई है वो ये है कि त्रिपिटक हमें एक बहुत ही उम्मीद भरा संदेश देता है। ये कहता है कि मानवीय दुख जो हम सब अनुभव करते हैं, वो एक हल करने योग्य समस्या है, और उसका समाधान बाहर की दुनिया को बदलने में उतना नहीं है जितना अपने मन को समझने और बदलने में है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, सशक्त और आशावादी मार्ग है।
के समाधान भीतर है। और मेरे लिए शायद सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 2500 साल पहले दिए गए ये विचार आज भी कितने सटीक और कितने प्रासंगिक लगते हैं। मन की उलझने, रिश्तों की चुनौतियां, शांति की तलाश, ये सब तब भी थीं, आज भी हैं, और त्रिपिटक का जो विश्लेषण है, जो समाधान है, वो आज भी उतने ही कारगर लगते हैं। ये दिखाता है कि कुछ सत्य होते हैं जो समय के साथ बदलते नहीं हैं।
बिल्कुल। तो त्रिपिटक सिर्फ बौद्ध धर्म का कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये मानव मन, मानवीय स्थिति और जीवन को गहराई से समझने का एक कालातीत, बहुत ही व्यवहारिक और विस्तृत खजाना है। इसका अनूठापन शायद इसी में है कि ये गहरी दार्शनिक अंतर्दृष्टि, व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक उपकरण और एक स्पष्ट नैतिक मार्गदर्शन इन सबको एक साथ पेश करता है।
हाँ, एक पूरी प्रणाली है ये। जो भी वास्तविक शांति, समझ और दुख से मुक्ति चाहता है, उसके लिए इसमें बहुत कुछ है।
ये हमें याद दिलाता है कि असली यात्रा भीतर की होती है।
बिल्कुल। और शायद ये सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाता है कि हम अपनी इस भीतरी यात्रा पे कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकातर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।